धवला पुस्तक 14वी लेक्चर नंबर 7 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं सिद्धे विवुद्धसयले अज्जत्थ बहित्थ बंधनं मुक्के भक्तिये अहं नमिउं पुनो पुनो बंधनं उच्छं। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड, और उसके बंधन अनुयोग द्वार को देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 64 पर आए गए। 64 बंधन अनुयोग द्वार में बंधक, बंधनीय और बंध विधान, ये चार उसकी चार प्रकार से विभाषा करते हैं। उसमें से हमने बंध देखा, बंधक की बात हमने 7वीं पुस्तक में, जिसको खुद्दा बंध या क्षुद्र बंध कहते, उसमें देखा। अब बंधनीय की बात चल रही है, बंधनीय ने जो बांधा जाता है उसमें कर्म और नो कर्म की बात, क्योंकि उसमें भी हमने अलग अलग निक्षेप लगाकर बात देखी थी, तो उसमें यहाँ बंधनीय की बात चल रही है, और उसमें भी वर्गणाओं का जो प्रकरण है उसकी बात हम यहाँ देख रहे हैं। हमने देखा है कि पुद्गल की जो 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं, तो उसमें एक प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा कहते हैं उसको, फिर द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, सबको संख्यात प्रदेशी कहेंगे, सबका मिलकर नाम है एक संख्यात प्रदेशी, परंतु उसके अनेक भेद हो गए, उत्कृष्ट संख्यात माइनस एक इतने तो उसके भेद हो गए संख्यात के, क्योंकि एक को छोड़ा उत्कृष्ट संख्यात में से। उसके बाद असंख्यात प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा कहेंगे, जघन्य असंख्यात से उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात तक सभी भेद उसमें आ जाएंगे। उसके बाद अनंत प्रदेशी कहेंगे, तो अनंत प्रदेशी में कहाँ तक ले जाना है, तो अभव्य से अनंत गुणे सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण, परमाणुओं का जो समूह है, वहां से वो अनंत प्रदेशी वहां तक है, मिनिमम जघन्य परिता संख्या अनंत से लेकर वहां तक। फिर उसके आगे जीव के ग्रहण योग्य जो वर्गणाएं शुरू होती है, पहली चार बताई, एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। उसके बाद पांचवी जो वर्गणा है वो आहार वर्गणा है, छठी है वो अग्राह्य, सातवीं है वो तेजस वर्गणा, आठवीं है वो अग्राह्य, नौवीं है वो भाषा वर्गणा, दसवीं अग्राह्य, ग्यारहवीं मनोवर्गणा, बारहवीं अग्राह्य, तेरहवीं कर्मण वर्गणा, चौदहवीं ध्रुव क्योंकि ग्राह्य के बीच बीच में अग्राह्य कहे, बाकी सब अग्राह्य ही है। ये पांच को छोड़कर सभी वर्गणाएं अग्राह्य ही है, परंतु ये पांच के अंतरालों में जार होती है, उसका नाम अग्राह्य वर्गणा या अग्रहण वर्गणा कहते हैं। उसके बाद जो ध्रुव वर्गणा है, तो यहां तक की सभी वर्गणाएं ध्रुव ही है, ये उसका जिसको कहेंगे कि अंत दीपक शब्द है, यहां तक की सभी ध्रुव वर्गणा है, यानी वो हमेशा ही पाए जाएंगे। अब उसके बाद ये ध्रुव, उसमें जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के एक एक परमाणु से बढ़ते हुए सबको ध्रुव स्कंद वर्गणा कहेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि जो अग्रहण वर्गणाएं थी वो जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणा थी, और जो जीव के ग्रहण योग्य जो आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा वगैरह हमने देखी थी, जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक होता था। अब ध्रुव वर्गणा में जघन्य और उत्कृष्ट में क्या अंतर है? तो जीव राशि से अनंत गुणा वाला तो गुणकार होगा उसका। तो ये 14वीं वर्गना यहाँ तक हो गई थी। अब उसके आगे हमको पढ़ना है 89 नंबर का सूत्र 64 पेज पर। प्रश्न ये भी पूछा गया था कि जो जीव ग्रहणी नहीं करता था उसका कथन क्यों कहते हैं? तो कहते कि टोटल कौन सी वर्गनाएं हैं और उसमें जीव कौन सी ग्रहण करता है, इसका ज्ञान उसके बिना नहीं हो सकता। अब हम सूत्र पढ़ते हैं। ध्वखंड दव्य वग्गणानम उवरी सांतर निरंतर दव्य वग्गणानाम। ध्रुवस्कंद द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा है। हाँ, पेज नंबर 64। जो वर्गणा अंतर के साथ निरंतर जाती है उसकी सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा संज्ञा है। क्या कहते हैं? अभी तक तो हमने सभी वर्गणा यहाँ तक की 14 वर्गणाओं तक देखा कि एक एक परमाणु से बढ़ती हुई सभी है। अब इसमें क्या होगा? सांतर, बीच में अंतर पड़ेगा, फिर कंटिन्यूअस में एक एक प्रदेश बढ़ते हुए, फिर बीच में कुछ नहीं होगी, फिर बढ़ते हुए, इस तरह से यह सार्थक संज्ञा है। उत्कृष्ट ध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणा में, अभी हमने जो 14 नंबर की देखी थी उसमें एक अंक के मिलाने पर जघन्य सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा होती है। आगे एक एक अंक के अधिक्रम से सब जीवों से अनंत गुणे स्थान जाकर सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट वर्गणा होती। ये जघन्य और उत्कृष्ट के भेद बताए। जघन्य से उत्कृष्ट वो भी, जैसे ध्रुव वर्गणा में हमने देखा था जीव राशि से अनंत गुणे, ऐसे यहाँ पर भी इतने स्थान जाने पर उत्कृष्ट ये सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा होती है। यह अपनी जघन्य वर्गणा से अपनी उत्कृष्ट वर्गणा अनंत गुणी है। तो गुणकार क्या है? सब जीवों से अनंत गुणा गुणकार है। यह 15वीं वर्गणा है। यह भी अग्रहण वर्गणा ही है क्योंकि यह आहार तेजस भाषा मन और कर्म के अयोग्य है। सांतर कहा कि उसमें बीच में ऐसे कुछ जो हमेशा नहीं पाए जाएंगे, यानी कंटिन्यूशन एक एक से बढ़ते हुए परमाणुओं की वर्गणा होगी, कुछ अंतर ऐसे होगी कि ऐसे कुछ नहीं पाई जाएगी, आगे एक एक से बढ़ती हुई पाई जाएगी। अभी तक हमने क्या देखा था 14वीं वर्गणा तक? एक एक परमाणु से बढ़ती हुई सभी पाए जाते, हमेशा पाई जाती है। अभी इसमें बीच में कुछ नहीं भी होगी, कभी हो जाएगी, इस तरह से उसमें सांतर निरंतर, सांतर निरंतर ऐसा है। अब उसकी बात आएगी फिर। ये हमने बहुत विस्तार से देखा था पहले भी। देखो अभी 90 नंबर का सूत्र। सांतर निरंतर दव्य वग्गणानम उवरी ध्रुवशून्य वग्गणानाम। अब ये ध्रुव शून्य हुआ, यानी इतने तो वर्ग है ही नहीं है, कभी भी नहीं होगी। तो सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर ध्रुव शून्य वर्गणा है। अतीत अनागत और वर्तमान काल में इस रूप से परमाणु पुद्गलों का संचय नहीं होता, इसलिए इसकी ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा यह सार्थक संज्ञा है। यानी इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ परमाणुओं का संचय द्वारा जो वर्गणा होती वो कभी भी नहीं पाई जाएगी। उत्कृष्ट सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा के ऊपर एक परमाणु अधिक परमाणु पुद्गल स्कंध तीनों ही कालों में नहीं होता। वो सांतर निरंतर का जो उत्कृष्ट वाला भेद तो होगा, उसके एक अधिक वाला कभी भी नहीं होगा। दो प्रदेश अधिक भी नहीं होता। इस प्रकार तीन प्रदेश अधिक आदि के क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे स्थान जाकर प्रथम ध्रुव शून्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट वर्गणा होती है। यानी जैसे हमने 14वें नंबर में देखा था कि जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणा है, जीव राशि से अनंत गुणा, ऐसे यहाँ पर भी 15 में भी देखा था, 16 में, 14 में, चौदह, 15, 16 सभी ऐसे ही है। देखो 14 के जहाँ 14 लिखा है ना उन्होंने सेकंड लाइन, सेकंड पैराग्राफ 64 पर, वो भी जीवराशि से अनंत गुणा था, सांतर निरंतर भी जीवराशि से अनंत गुणा, और अब ध्रुव शून्य वर्गना में भी जघन्य से उत्कृष्ट है, वो अनंत गुणा है। कितना अनंत? जीवन से अनंत गुणे स्थान जाके यह अपनी जघन्य वर्गना से अपनी उत्कृष्ट वर्गना अनंत गुणी है। गुणकार क्या है? सब जीवों से अनंत गुणा गुणकार है। यह 16वीं वर्गना है, पेज नंबर 65, जो सर्वदा शून्य रूप से अवस्थित है, यानी यह कभी पाई ही नहीं जाएगी, फिर भी उसको वर्गना भी कहेंगे, क्योंकि वो नंबर ऑफ परमाणु को हमको ज्ञान कराने के लिए वो कह दिया, इसलिए उसका नाम वर्गना रखकर उसको ध्रुव शून्य कहते हैं। अब आगे 91 नंबर का सूत्र है, ध्रुवशून्य दव्य वगणाणम उवरी पत्तेय शरीर दव्य वगणाणाम। ध्रुवशून्य द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा है। देखो, एक एक जीव के एक एक शरीर में उपचित हुए, उपचित यानी संचित, इकट्ठे हुए कर्म और नोकर्म स्कंधों की प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा संज्ञा है। क्या कहते हैं? एक जीव है और उसके वह कर्म भी है और नोकर्म भी है, वो स्कंध की मिलकर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा कहते हैं। अब हाँ, कर्म नोकर्म दोनों लिए ना, अभी क्या पढ़ा अभी हमने, एक एक शरीर में उपचित कर्म और नोकर्म स्कंधों की प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा संज्ञा है। हाँ, कर्म और नोकर्म का पूरा स्कंद। अब उत्कृष्ट ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा होती है। ये आगे सब आने वाले हैं। जो प्रत्येक शरीरी जीव है ना, और जिसके आश्रय से निगोद नहीं रहते, अप्रतिष्ठित, ऐसे शरीरों का संचय यहाँ दे लेना पड़ेगा। देखो देखो, ये सब ये उसी की चर्चा है, अभी सब आने वाली है, ठीक है ना, हम उसी को पढ़ेंगे। अभी प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना का बहुत विस्तार से वर्णन आ रहा है। अभी देखो, ये जो मनुष्य जो है वो प्रत्येक शरीरी जीव है, परंतु उसके आधार से बादर निगोद रहते हैं, तो उसको बादर निगोद वर्गणा में चला जाएगा वो। ये प्रत्येक शरीर वर्गणा में जो अग्नि कायकों का समूह है, पृथ्वी कायकों का समूह है, जो एक स्कंद रूप से रहते हैं, उसकी बात वहां आ जाएगी। अनेक स्कंद हुआ है ना उसकी, अरे पर एक शरीर से दूसरा शरीर भी जुड़ा है ना वहां पर, इसीलिए मैं कहती हूँ अभी पूरा पढ़ेंगे तब आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, है ना। यहाँ तो एक एक जीव के लिया, एक एक जीव के एक एक शरीर में उपचित हुए कर्म और नोकर्म स्कंदों की प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा है। अब उत्कृष्ट ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा होती है। हमारी अभी तक जो एक से दूसरी वर्गणा जो है उसमें एक परमाणु अधिक होता है, वो हम देखते आए हैं। शंका, यह जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा किसके होती है? समाधान, जो जीव सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तकों में पल्ले के असंख्यात में भाग कम, वो माग हुआ है, भाग कम कर्मस्थिति काल तक क्षपित कर्मांशिक रूप से रहा। देखो क्या कहा, पहले हमने क्षपित कर्मांशिक गुणित कर्मांशिक बहुत विस्तार से चर्चा की थी। अब यहाँ ऐसा क्षपित कर्मांशिक जीव लेना है कि जिसने बहुत सारा कर्म छिपाया है। वो हमने पहले देखा था ना कि असंख्यात बार सम्यक तो प्राप्त किया, विसंजना की वो पांचवा गुण स्थान प्राप्त किया, चार चार बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा, इत्यादि इत्यादि सब। और अभी वो सूक्ष्म निगोद में है। तो कहते जो जीव सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तकों में पल्ले के असंख्यातवे भाग कम कर्म स्थिति काल तक क्षपित कर्मांशिक रूप से रहा, क्योंकि इसमें भी उसने वो सारे कांडक वगैरह अनुभव कांडक स्थिति कांडक इसमें भी होते हैं। अब कहते पुनः जिसने एक्चुअली अपर्याप्तकों में लगातार इतना नहीं रह सकता, अपर्याप्तों में तो अंतर्मूर्त ही रहेगा, परंतु सूक्ष्म निगोद में अधिक बार रहा। पुनः जिसने पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण संयमासंयम कांडक इनसे कुछ अधिक सम्यक्त्व कांडक तथा अनंतानुबंधी के विसंयोजना कांडक तथा आठ संयम कांडक करते हुए चार बार कषाय की उपशमना की, पुनः अंतिम भव को ग्रहण करते हुए पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। वहां पर भी अंतिम छोटा भव नहीं लिया, पूर्व कोटि का लिया। अनंतर गर्भ निष्क्रमण काल से लेकर आठ वर्ष और अंतर्मूर्त का होने पर सम्यक्त्व और संयम को एक साथ प्राप्त करके सयोगी जिन हो गया, यानी आठ वर्ष और कुछ अंतर्मूर्त में उसने सयोगी अवस्था प्राप्त की और आयु उसकी पूर्व कोटि की है। अभी वहां से लेकर उसकी तो क्षपना चलेगी ना। अनंतर कुछ कम पूर्व कोटि काल तक औदारिक और तेजस शरीर की अधस्थिति गलना के द्वारा पूरी निर्जरा करके तथा कार्मण शरीर की गुणश्रेणी निर्जरा करके, औदारिक और तेजस शरीर में गुणश्रेणी रूप से निर्जरा नहीं होती, वो तो एक एक समय प्रबद्ध बनता है, तो गलितावशेष जितनी आयु है उतने उसके निषेक बनते हैं और जितने जितने बंदे उसका एक एक उदय रूप जो निषेक है वो गलता रहता है। तो कहते अंतिम समयवर्ती भव्य हो गया। लक्ष्मी जी अंतिम समयवर्ती भव्य ने उसका अर्थ क्या है? चौदहवे तक उसको भव्य कहेंगे, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। इस प्रकार आकर अभी देखो बारहवें तक तो उसके निगोद थी, अभी वो प्रत्येक शरीर यानी निगोद रहित हुआ और उसने इतनी सारी कर्म खिपाए हैं, उसे कर्म भी कम है और औदारिक तेज शरीर भी कम हुआ क्योंकि उसने पूर्व कोटि वाली आयु ली थी। तो इस प्रकार आकर जो अयोग केवली के अंतिम समय में स्थित है उसके सबसे जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा होती है, क्योंकि इसके शरीर में निगोद जीवों का अभाव है। देखो प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा सबसे कम कोई एक अग्नि का एक जीव, एक पृथ्वी का एक जीव नहीं लिया है। ख्याल में आई थी ना बात? यानी संयम ग्रहण किया उन्होंने। वैसे तो 32 बार तो मैक्सिमम हो सकते हैं, यहाँ संयम के कांडक लिए आठ में, वो कांडक में वो जो कुछ गर्भित हो जाते हैं। क्या यानी हर बार उसने कर्म तो खिपाया है ये? हाँ नहीं नहीं, पर इतना एक्स्ट्रा लेके आया है तो उसका इतना खिरता नहीं, उसकी ज्यादा रहते शेष। क्षपित कर्मांशिक की सारी कंडीशन ही ऐसी है, हमने पहले भी देखा था, मिनिमम पॉसिबल उसकी सत्ता में रहता है क्षपित। जरूर कि क्या लोग स्वयं अपने कारण से घूमते हैं ना, तो पॉसिबिलिटी वही लेनी ना हमको, मैक्सिमम पॉसिबल किसके मिनिमम कर्म रहेंगे उसकी बात लेनी। इतनी बार हाँ तो इतने बार वो गिरा और इतने बार वो प्राप्त किया, वही तो। हाँ नहीं होता ना होता तो क्यों बताते इतना, और फिर भी सूक्ष्म निगोद में भी रखा है, खाली ये इतने बार प्राप्त करा के उसको भेजा नहीं है, सूक्ष्म निगोद में जाता है तो एक्चुअली उसके वहां से निकलने के बाद इतना नहीं घूमेगा, क्योंकि उसमें क्षपित कर्मांशिक रूप से वहां गया है। ये थोड़ा क्रम बताने में आगे पीछे है, यहाँ पे हमने पहले देखा था वहां से निकलकर फिर बादर होकर वो मनुष्य, ये जो कंडीशन हमने बहुत विस्तार से देखी थी वो सब इसमें अप्लीकेबल था, वो लेना नहीं। उसमें वहां से आकर फिर भी बादर पृथ्वी कायक वगैरह या कुछ उसमें से आता है वो इस तरह से, और यहाँ तो बाद में पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण संयम संयम वगैरह वगैरह ले लिया, और पहले उसको क्षपित कर्मांशिक ले रखा था। अभी जो हमने पहले पढ़े ना वो सारे यहाँ अप्लाई हो जाएगी। मिनिमम हाँ प्रत्येक शरीर किसको, यानी 14वें गुणस्थान में तो वो प्रत्येक 12वें 13वें से प्रत्येक शरीर ही हो जाएगा, क्योंकि सारी निगोद निकल गई है उसके शरीर से। परंतु 13वें गुणस्थान में लंबा काल इसलिए रखा कि उसमें औदारिक शरीर के तेज शरीर के भी तो हाँ, और कर्म भी इतना खिप रहा है। ऐसा ही समझना। हाँ वो केवल अपर्याप्त में नहीं लेना, मैक्सिमम बार अपर्याप्त हुआ होगा ऐसा ले सकते हम उसमें से, परंतु वो पर्याप्त अपर्याप्त, क्योंकि पर्याप्त में मैक्सिमम अंतर्मूर्ति रह सकता है, अपर्याप्त भी अंतर्मूर्ति ही रह सकता है, दोनों मिलकर लोक के असंख्यात लोक प्रमाण काल तक रह सकता है, उसमें से वो कर्म स्थिति माइनस इतना रहा, वो क्यों रहा इतनी क्यों लिए वो सब हमने बहुत विस्तार से देखा था कि पहले समय में बंधी हुई कर्म स्थिति प्रमाण वो कितने परमाणु रहते हैं, क्या होते हैं, उनमें क्या क्या बातें होती है, ये सब हमारा विस्तार से हो चुका है। इसलिए सभी कंडीशंस जहां अप्लाई होते मिनिमम पॉसिबल वो प्रत्येक शरीर वर्गणा किसके होती है ये बात यहाँ बता रहे। देखो लास्ट में क्या लिखा है, क्योंकि इसके शरीर में निगोद जीवों का अभाव है। अब इस वर्गणा के महात्म्य का ज्ञान कराने के लिए स्थान प्ररूपना कहते हैं, महात्म्य ने अधिक से अधिक कितना होगा, तो मिनिमम तो बता दिया, तो उसमें एक एक परमाणु से बढ़ते हुए जो अन्य अन्य जो सारी हाँ विकल्प हो गए वो बताएंगे यहाँ पर। यथा औदारिक शरीर तेजस शरीर और कारमान शरीर के परमाणुओं के 3 पुंज ऊपर स्थापित करके और उनके पहले ही विश्रसोपचयों के पुंज स्थापित करके फिर इन जघन्य 6 पुंजों के ऊपर परमाणुओं के बढ़ाने की विधि कहते हैं। यानी वो हमने अभी जो बात देखी थी जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना किसके होती है, तो क्षपित कर्मांशिक की पूरी कंडीशन पूरी करके करोड़ पूर्व के मनुष्यों में आकर जो 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में स्थित है वो सब जो कंडीशन अभी हमने जो पढ़ी वो सब लागू होती है, 8वें साल के बाद केवल ज्ञान हुआ वगैरह वगैरह। अब कहते उसके जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गना है, देखो तो उसके पास कौन कौन से है परमाणु का, कितने परमाणु का इकट्ठा पुंज है, तो 14वें गुणस्थान वाले के औदारिक शरीर है, वैक्रिक शरीर सॉरी औदारिक शरीर है, तेजस शरीर है, कारमान शरीर है, और तीनों के विश्रसोपचय भी है, इसलिए 6 पुंज हुए। अब उसमें केवल एक ही परमाणु बढ़ाना है तो उसकी विधि बताते, अलग अलग अभी कैसे कैसे कहां तक बढ़ा सकते हैं वो बताएंगे। क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर जो अंतिम समयवर्ती भव्य हुआ है और उसके औदारिक शरीर के विश्रसोपचय पुंज में एक विश्रसोपचय परमाणु के बढ़ने पर वह अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। एक और विश्रसोपचय का एक परमाणु, वो तभी कितना सूक्ष्म और इतने विश्रसोपचय, हाँ हाँ, अपुनरुक्त तभी तो कहेंगे, एक एक परमाणु से बढ़ते हुए जहां होगी उसकी चर्चा करेंगे अभी हम। पुनः उसी में दो परमाणुओं के बढ़ने पर ये पहला हो ना, तीसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। तीन परमाणुओं के बढ़ने पर चौथा अपुनरुक्त स्थान होता है। चार विश्रसोपचय परमाणु पुद्गलों के बढ़ने पर पांचवा अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार औदारिक शरीर के विश्रसोपचय पुंज में सब जीवों से अनंत गुणे परमाणुओं की वृद्धि होने तक उत्तरोत्तर एक एक परमाणु की वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार वृद्धि करने पर औदारिक शरीर के विश्रसोपचय पुंज में सब जीवों से अनंत गुणे अपुनरुक्त स्थान उपलब्ध होते हैं। यह स्थान प्ररूपणा संभव सत्य की अपेक्षा की है। जो हमने सत्य के अलग अलग 10 भेद देखे थे, जनपद सत्य वगैरह जीव कांड में, हाँ ये संभव है, संभावना पॉसिबिलिटी। शंकाकार पूछते हैं संभव सत्य किसे कहते हैं? समाधान, इंद्र मेरु को पलटने में समर्थ है इसे संभव सत्य कहते हैं। यानी वो मेरु को कभी पलटाने वाला नहीं है, इतनी उसमें शक्ति पाई जाती है उसको संभव सत्य कहते हैं। शंका, व्यक्त रूप से इतने स्थानों के उत्पन्न होने पर क्या दोष उत्पन्न होता है? समाधान, नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर सब जीवों से सिद्ध अनंत गुणे प्राप्त होते हैं। परंतु यहाँ जितने स्थान उत्पन्न किए गए हैं उतने सिद्ध है नहीं, क्योंकि सिद्ध अतीत काल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अतीत काल के असंख्यात विभाग कैसे, असंख्यात गुणा हो गए? छह सौ आठ, अच्छा समय में,
समय की
अपेक्षा हमने 6 महीने 8 समयों को गुणा किया था। असंख्यात विभाग यानी असंख्यात समयों में एक सिद्ध हुआ, इस तरह बराबर। इसलिए उन्हें उक्त स्थान प्रमाण मानने में विरोध आता है। औदारिक शरीर का एक परमाणु बढ़ाया, दो परमाणु बढ़ाया, तीन परमाणु, इसे जीवों से भी अनंत गुणे बढ़ाते तब चले जाएंगे। ये तो संभव की बात है, परंतु ऐसा होगा नहीं कभी। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं। पुनः क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर सबसे जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गणा के ऊपर विश्रसोपचय सहित एक परमाणु से औदारिक शरीर को अधिक करके अन्य एक जीव के स्थित होने पर यह भी अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि उत्तरोत्तर एक परमाणु के क्रम से पहले बढ़ाए हुए औदारिक शरीर विश्रसोपचय पुंज के साथ, पहले तो देखो क्या कहा, पहले तो विश्रसोपचयों को इतना बढ़ाया, अब कहते हैं औदारिक शरीर का एक परमाणु बढ़ाओ, तो अकेला एक परमाणु नहीं बढ़ेगा, उसका विश्रसोपचय साथ में बढ़ेगा। हाँ, तो कहते जीवराशि से अनंत गुणा होते हैं एक परमाणु के साथ। पहले विश्वसोपचय बढ़ाते गए, वो संभव सत्य की अपेक्षा। अब कहते मैक्सिमम पॉसिबल विश्वसोपचय बढ़ाया, अब क्या करना, औदारिक शरीर का एक परमाणु बढ़ाओ, तो अकेला परमाणु नहीं बढ़ेगा, उसके विश्वसोपचय बढ़ेंगे साथ में। यानी औदारिक शरीर का एक परमाणु तो अधिक हो सकता है ना। विश्वसोपचय अनंत हो गए ही, यानी वो केवल एक परमाणु बढ़ा और उसे विश्वसोपचय नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए पहले संभव सत्य की अपेक्षा विश्वसोपचय बढ़ाते गए और फिर औदारिक शरीर बढ़ाकर एक पुनरुक्त स्थान उन्होंने उत्पन्न कराया। हाँ, अब देखो फिर से पढ़ती हूँ मैं ये पूरा पैराग्राफ। पुनः क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर सबसे जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गना के ऊपर विश्रसोपचय सहित एक परमाणु से औदारिक शरीर को अधिक करके, अन्य एक जीव के स्थित होने पर यह भी अपुनरुक्त स्थान होता है। पहले उतने ही औदारिक शरीर के परमाणु रखकर विश्रसोपचय को बढ़ाते गए थे, अब कहते उसको वैसा ही रखकर औदारिक शरीर में एक बढ़ा दो, क्योंकि उत्तरोत्तर एक परमाणु के क्रम से पहले बढ़ाए हुए औदारिक शरीर विश्रसोपचय पुंज के साथ इस समय औदारिक शरीर का एक परमाणु अधिक देखा जाता है। देखो क्या कहा था, ये किस कैसा लिया, विश्रसोपचय तो ऐसे बढ़ा नहीं सकते हैं, फिर भी हमने संभव सत्य की अपेक्षा उसको बढ़ाया, हमको अपनरुक्त स्थान बताना था, तभी उसको छोड़ दो बढ़ाए हुए को। अब दूसरा ऐसा जीव लिया कि जितने बढ़ाए हुए थे ना उतने विश्रसोपचय से ही तो औदारिक शरीर का ही एक परमाणु बढ़ाए, तो कंटिन्यूस में ये स्थान मिल गया, ये कहना चाहते। नीचे से तीसरी लाइन, पूर्वोक्त तो औदारिक शरीर की, देखो देखो औदारिक शरीर का एक परमाणु अगर केवल बढ़ाते तो अनंत का डिफरेंस होता, हमको निरंतर स्थान बताने हैं ना। देखो हम क्या कहते हैं, जैसे हम अनंत को छोड़कर सौ की बात देखते हैं, यानी औदारिक शरीर के ये परमाणु पड़े और एक एक के साथ हम सौ सौ मानते विश्रसोपचय, तो पहले उन्होंने क्या इमेजिन किया, इतने ही औदारिक शरीर के परमाणु है और उसमें एक बढ़ा दो बढ़े तीन बढ़े विश्रसोपचय बढ़ाए हैं, वही पहले में बता रहे, तो सौ तक बढ़ाए, यानी एक के साथ सौ थे ना, तो एक के सौ सौ थे तो वो सौ को बढ़ाते बढ़ाते 200 तक ले गए मान लेते। अब क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने औदारिक शरीर का एक परमाणु बढ़ाया, तो उसके वो एक प्लस विश्रसोपचय सौ 101 एक साथ बढ़ेंगे, इसलिए पहले इसको बढ़ाते 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 100 तक बढ़ाते गए थे, ये टोटल जितने थे उसमें एक एक विश्रसोपचय बढ़ाते बढ़ाते 100 बढ़ाए, ये जितना था एक प्लस 100 हुए थे। अभी यहाँ एक परमाणु बढ़ाया औदारिक शरीर का, और पहले ये बढ़ाए हुए इसको उसको अभी कंसिडर मत करो, उसके तो हमने संभावना में ले ली बात, अब वो पहले ही जो विश्रसोपचय थे एक विश्रसोपचय सहित उसमें डायरेक्ट हमने केवल एक औदारिक शरीर का परमाणु बढ़ाया, तो वो 101 एक साथ बढ़ गए। पहले संभावना में हमने इसको बढ़ाते गए थे, उसको वैसा ही रखो और पहले वाले जितने थे उसको 101 बढ़ाए, एक परमाणु बढ़ाया तो उसके 100 उसके साथ आ गए, 101 हो गए, इस तरह से बढ़ाना। देखो नीचे से तीसरी लाइन, पूर्वोक्त औदारिक शरीर के सबसे जघन्य परमाणु पुंज की अपेक्षा, वो हमने पहली केस कंसीडर की थी, सांप्रतिक औदारिक शरीर परमाणु पुंज एक परमाणु अधिक है। औदारिक शरीर का एक परमाणु बढ़ है, उसके साथ उसका विसर्गोपचय आ ही गया। पुनः पूर्वोक्त क्षपक को छोड़कर और सांप्रतिक क्षपक को ग्रहण कर इसके औदारिक शरीर विसर्गोपचय पुंज में एक परमाणु अधिक, दो परमाणु अधिक आदि के क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे विसर्गोपचय परमाणु उद्गलों के बढ़ने पर सब जीवों से अनंत गुणे ही अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होते हैं। यानी उसके केवल विसर्गोपचय बढ़ाते जाओ, फिर क्या करना, फिर और एक औदारिक शरीर का परमाणु बढ़ाओ तो अपुनरुक्त मिल जाएगा। पेज नंबर 68, नया पैराग्राफ। पुनः क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर सबसे जघन्य औदारिक शरीर पुंज को दो परमाणु अधिक करके तथा उसी के विसर्गोपचय पुंज को भी विसर्गोपचय पुंज की अपेक्षा दो परमाणु अधिक करके अन्य जीव के स्थित होने पर अनंतर पिछले स्थान से सांप्रतिक स्थान एक परमाणु अधिक होता है। जैसे हमने 101 के डायरेक्ट बढ़ाए थे, फिर इसमें बढ़ाते बढ़ाते पहुंच गए, और बाद में और एक बढ़ाना और दो परमाणु विसर्गोपचय के अधिक लेना। अब इस समय उत्पन्न हुए स्थान के औदारिक शरीर विसर्गोपचय पुंज में एक परमाणु पुद्गल के बढ़ने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार 2-3 से लेकर सब जीवों से अनंत गुणे औदारिक विसर्गोपचय परमाणु पुद्गलों के बढ़ने पर अनंत अपुनरुक्त स्थान उपलब्ध होते हैं, क्योंकि विसर्गोपचय बढ़ाए तो उसमें अनंत होते, जीव राशि से अनंत गुणे होते हैं, तो इतने अनंत उसके स्थान भी हो गए। अनंतर क्षपित कर्मांशिक रूप से प्राप्त सबसे जघन्य औदारिक शरीर पुंज को 3 परमाणु अधिक करके, वो औदारिक शरीर में एक एक परमाणु बढ़ाए, अभी 3 बढ़ाए, तथा सबसे जघन्य विसर्गोपचय पुंज में विसर्गोपचय के 3 परमाणु अधिक करके स्थित हुए अन्य जीव के अनंतर पिछले स्थान से एक बार वृद्धि होकर प्राप्त हुआ सांप्रतिक स्थान एक परमाणु अधिक होता है। ये समझ में आए ना, पहले विसर्गोपचय बढ़ाते लेना, फिर वो औदारिक शरीर में एक और एक्स्ट्रा करना, और विसर्गोपचय में जघन्य नहीं लेना, जघन्य प्लस 2 लेना, इस तरह से। वर्तमान सांप्रतिक यानी जिसकी हम बात कर रहे वो। इस प्रकार इस विधि से अपने अपने तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट द्रव्य के प्रमाण के प्राप्त होने तक औदारिक शरीर के 2 पुंज बढ़ाने चाहिए। इतनी विशेषता है कि इन सब स्थानों में तेजस और कार्मन शरीर सबसे जघन्य रहते हैं, उनको उतना ही रख के औदारिक शरीर के पुंज को हमने बढ़ाया। शंका, इन चारों यानी तेजस कार्मन शरीर और उनके विसर्गोपचय की वृद्धि हुए बिना अपने विसर्गोपचय सहित औदारिक शरीर की ही वृद्धि कैसे होती है? समाधान, नहीं, क्योंकि इन चारों के जघन्य रहते हुए उनकी अविरोधी उत्कृष्ट वृद्धि ही यहाँ ग्रहण की है। यानी वो जघन्य रहते हुए जितनी पॉसिबल है उतनी ले ली है। यहाँ 2 पुंज बढ़ाने चाहिए ना औदारिक शरीर का, उसके विसर्गोपचय का 2 बढ़ाते गए, बाकी 4 उतने ही रखे थे। यहाँ तो हमें अलग अलग विकल्प कैसे हो सकते हैं अपुनरुक्त, तो उसकी बात चल रही है। एक एक परमाणु से बढ़ते हुए अलग अलग स्थान। पुनः अन्य क्षपित कर्मांशिक जीव के विसर्गोपचय सहित औदारिक शरीर को उत्कृष्ट करके अनंतर तेजस शरीर के सबसे जघन्य विसर्गोपचय पुंज में एक परमाणु पुद्गल के बढ़ाने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। हमें टोटल संख्या 1 से बढ़ानी है, पहले औदारिक शरीर के जितने मैक्सिमम कर सकते थे उतने कर दिए, अब तेजस शरीर के विसर्गोपचय में 1 बढ़ाना है। अनंतर अन्य जीव के द्वारा तेजस शरीर के विसर्गोपचय पुंज में 2 परमाणु अधिक करके करने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। यहाँ पर विसर्गोपचय सहित औदारिक शरीर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट है, उसको उत्कृष्ट तक ले गए थे और फिर इसी में बढ़ा रहे। तेजस शरीर परमाणु पुंज जघन्य है और विसरसोपचय सहित कार्मन शरीर भी यहाँ पर जघन्य है। यानी पहले हम औदारिक शरीर और उसका विसरसोपचय उत्कृष्ट तक ले गए थे, फिर तेजस शरीर को भी जघन्य रखना, कार्मन शरीर और उसका विसरसोपचय भी जघन्य रखना, केवल तेजस के विसरसोपचय को बढ़ाते जाना। पुनः अन्य जीव के तेजस शरीर के विसरसोपचय परमाणु पुंज को तीन परमाणु अधिक करके स्थित होने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार परमाणु अधिक आदि के क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे विसरसोपचय रूप परमाणु पुद्गलों की वृद्धि होने पर अनंतर जिसने विसरसोपचय सहित औदारिक शरीर को ओह उत्कृष्ट किया है और विसरसोपचय सहित कार्मन शरीर को जघन्य किया है तथा तेजस शरीर को एक परमाणु अधिक करके, अभी तेजस में एक बढ़ाया, पहले उसके केवल विसरसोपचय बढ़ाते, केवल एक परमाणु नहीं बढ़ाएगा, उसकी विसरोपचय भी उसके साथ जघन्य को उसको ले सकते हैं। वह उसी के विसरसोपचय पुंज को विसरसोपचय के एक परमाणु से अधिक करके जो क्षपित कर्मांशिक अन्य जीव स्थित है उसके अनंतर स्थान से सांप्रतिक स्थान एक परमाणु अधिक होता है। अनंतर यानी पूर्व वाला, प्रायर वाला अनंतर, पूर्व स्थान से यहाँ एक परमाणु अधिक है। हाँ, आपका प्रश्न चौदहवे के अंत में औदारिक शरीर का उदय है। हाँ, फिर से संयम संयम के पश्चात और वैक्रिय शरीर का बंध किया। हाँ, आपका घोटाला कहाँ हो रहा है लक्ष्मी, बताएंगे आप? इनके प्रश्न का उत्तर आप देना चाहते हैं? उन्होंने ये बात बताई कि सम्यक तो हुआ है और वो जीव तो वैकरिक शरीर का बंध कर रहा है, तो उसके सत्ता में औदारिक ही आप केवल ले रहे, वैकरिक शरीर को क्यों नहीं लिया, आप बताएंगे? सुनो, इनका घोटाला कहाँ हो रहा है? देखो, नहीं, देखो, इन आपका घोटाला नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो वैकरिक शरीर नाम कर्म बांध रहा है, वो कर्म में आ ही गया। देखो इनका क्या घोटाला हुआ, वो कहते हैं ना बंध बंध देवगति के साथ वैकरिक शरीर बंध रहा है, पर वही तो उनका प्रश्न तो वही था, वो तो वैकरिक शरीर नाम कर्म बंध रहा है, वो कर्म पुंज में सब आ गए। उनको क्या लगा वैकरिक शरीर वहाँ पड़ा है, उसके पुंज कहाँ गए? क्या मैं अधीन बात, इनका क्या घोटाला हुआ? अरे वो जो शरीर नाम कर्म बंध है वो तो सत्ता में पड़ा है। नहीं नहीं, वो इनका घोटाला कहाँ हो रहा था? वो तो कर्म पुंज में आ गए, जो बांध रहे वो सब कर्म पुंज में गए, और यहाँ तो शरीर की बात है। और ये इन संबंधी नाम कर्म है, तेजस शरीर नाम कर्म औदारिक शरीर, वो तो सब परमाणु पुंज में, वो सब परमाणु पुंज में आ गए, यानी कर्म पुंज में वो सबको इंक्लूड कर दिया, जिसका उदय है, जो सत्ता में पड़ा है, जो उदय नहीं है, वो भी सब, क्योंकि बंद रहा है वैकरिक शरीर, उदय है औदारिक शरीर का, है ना? वो सब सत्ता में, वो परमाणु में है सर, यानी कर्म रूप से पड़े हैं, और यहाँ बात करें शरीर रूप से जो ग्रहण किए उसकी। तो अभी हम तेजस के पहले विसरसोपचय बढ़ाए, फिर तेजस का परमाणु बढ़ाया, फिर उसके विसरसोपचय बढ़ाए, फिर वो इस तरह से कारण का जानकर कथन करना चाहिए। इस प्रकार नीचे से तीसरी लाइन, तेजस शरीर के दो पुंज, दो पुंज ने एक तेजस शरीर का और उसके विश्रोस उपचय का तत्प्रायोगी उत्कृष्ट होने तक बढ़ाने चाहिए। ये समझ में आई ना? विश्रोसोपचय बढ़ाओ, फिर तेजस शरीर का परमाणु बढ़ाओ, फिर विश्रोसोपचय बढ़ाओ, फिर इसको बढ़ाओ, इस तरह से। शंका, यहाँ तत्प्रायोगी उत्कृष्ट से क्या तात्पर्य है? समाधान, योग वृद्धि के बिना उत्कर्षण और अपकर्षण के द्वारा विश्रोसोपचय सहित जितने परमाणुओं की वृद्धि संभव हो, उत्कर्षण अपकर्षण है वो कम खिर गए या अधिक रहे, इस तरह से उसकी बात लेना। क्योंकि अगर योग बढ़ा है तो औदारिक कारमान सबको ग्रहण करेगा, तो एट ए टाइम परमाणु बढ़ेगी खूब, इसलिए योग की वृद्धि किए बिना इसकी बात है। तो जितने परमाणु की वृद्धि संभव हो मात्र उतने परमाणु अधिक करना, यही यहाँ तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट पद से तात्पर्य है। शंकाकार पूछते हैं, योग से परमाणुओं की वृद्धि क्यों नहीं ली गई? समाधान, नहीं, क्योंकि योग से परमाणुओं की वृद्धि ग्रहण करने पर तीनों शरीरों की युगपद वृद्धि प्राप्त होती है, और वो भी केवल एक परमाणु का डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि योग थोड़ा असंख्यात्वा भाग अधिक भी हो जाएगा, तो समय प्रबद्ध भी असंख्यात्वा भाग अधिक होगा, यानी अनंत परमाणु एक साथ बढ़ेंगे, और वो भी तीनों शरीरों में बढ़ेंगे। पुनः क्षपित कर्मांशिक अन्य एक जीव लीजिए, जो विश्रसोपचय सहित औदारिक और तेजस शरीर को तत्प्रायोगी उत्कृष्ट करके, अभी कार्मन शरीर का नंबर है, कार्मन शरीर के विश्रसोपचय में सब जीवों से अनंत गुणे परमाणुओं की वृद्धि होने तक एक एक परमाणु बढ़ाता है, तब पहले के समान क्षपित कर्मांशिक इस अन्य जीव के अयोगी गुणस्थान के अंतिम समय में स्थित होने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। पुनः अन्य एक क्षपित कर्मांशिक जीव लीजिए, जिसने अपने विश्रसोपचय सहित औदारिक और तेजस शरीर को तत्प्रायोगी उत्कृष्ट लिया है, तथा जो कार्मन शरीर के प्रति क्षपित कर्मांशिक है, यानी वो मिनिमम है उसका, उसके कार्मन शरीर के विश्रसोपचय जघन्य पुंज में दो परमाणु अधिक करके अयोगी गुणस्थान के अंतिम समय में स्थित होने पर उस समय अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार सब जीवों से अनंत गुणे परमाणुओं की वृद्धि होने तक कार्मन शरीर के विश्रसोपचय को एक एक परमाणु द्वारा बढ़ाना चाहिए। वही लेना है, अभी उसी में इतने स्थान उत्पन्न करा रहे, अभी वो तो सब, हाँ अभी वो तो अयोग्य के अंतिम समय में, फिर उसके द्विचरम समय में कितने हो गए जीव? अभी तो पूरे अयोग्य के असंख्यात समयों में ये सब घटित कर सकते हम, क्योंकि उतना उसना एक कम, एक एक समय प्रबद्ध कम खिरा है ना, अभी तो उसके बाद भी नहीं उठाई है, अभी तो अंतिम समय में है। इतने अलग विकल्प परमाणु, एक एक परमाणु कितना सूक्ष्म है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी बताए ना, अन्य अन्य ही जीव लेना। ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है उसको बता ना, अभी ऐसे ऐसे होते हैं ऐसा कहेंगे तो सिद्ध ही अनंत हो जाएंगे जीवन से, ये पहले बता चुके थे। हाँ, ये हो गया ना एक पैराग्राफ, नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ ले। पुनः अन्य एक क्षपित कर्मांशिक जीव लीजिए, जिसने अपने विश्रसोपचय सहित औदारिक और तेजस शरीर को तत्प्रायोगी उत्कृष्ट किया है, और जो कार्मन, ये पढ़ा था, कार्मन शरीर के प्रति क्षपित कर्मांशिक है, उसके कार्मन शरीर के विश्रसोपचय जघन्य पुंज में अब दो परमाणु बढ़ाना, अयोग केवली के अंतिम समय में स्थित होने पर उस समय अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार सब जीवों से अनंत गुणे परमाणुओं की वृद्धि होने तक कार्बन शरीर के विशेषोपचय को एक एक परमाणु द्वारा बढ़ाना चाहिए। पुनः क्षपित कर्मोशिक एक अन्य जीव लीजिए जो अयोगी गुणस्थान के अंतिम समय में कार्बन शरीर को एक परमाणु अधिक करके तथा कार्बन शरीर के विशेषोपचय पुंज को सब जीवों से अनंत गुणे परमाणुओं के द्वारा बढ़ाकर स्थित है। उसके सब पिछले स्थान से सांप्रतिक स्थान एक परमाणु अधिक होता है। हाँ, क्योंकि एक परमाणु बढ़ेगा तो उसके विशेषोपचय इतने उसके साथ बढ़ेंगे बढ़ेंगे। पुनः पूर्वोक्त क्षपक को छोड़कर सांप्रतिक क्षपक के कार्बन शरीर के विशेषोपचय पुंज में एक परमाणु की वृद्धि करने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार कार्बन शरीर के विशेषोपचय पुंज में सब जीवों से अनंत गुणे परमाणु पुद्गलों के बढ़ाने पर उस समय पहले के समान क्षपित कर्मोशिक जो अन्य जीव अयोगी गुणस्थान के अंतिम समय में कर्मन शरीर को पहले के समान एक परमाणु अधिक करके स्थित है, उसके तब अनंतर पिछले स्थान से यानी पूर्व स्थान से सांप्रतिक स्थान एक परमाणु अधिक होता है। इस प्रकार योग के बिना अपकर्षण उत्कर्षण के द्वारा ही जो वृद्धि होती है उससे उत्कृष्ट वृद्धि के होने तक वृद्धि करनी चाहिए। यानी मात्र वो किसी के कम खिरे अधिक उत्कर्षण हुआ वगैरह वगैरह अन्य अन्य पॉसिबिलिटी उसमें ले लेना है। पुनः इन छह द्रव्यों के साथ छह द्रव्य ने वो पुंज छह पुंज हाँ योग के द्वारा एक बार छह द्रव्यों में बढ़ाए हुए द्रव्य के बराबर वृद्धि करके स्थित हुआ जीव समान है। देखो अभी तो हमने इतने विकल्प जो देखे थे ना, एक एक परमाणु बढ़ाए विशेषोपचय के, फिर मूल एक शरीर का एक एक परमाणु बढ़ाया, फिर विशेषोपचय अनंत बढ़ाए, फिर एक बढ़ाए, इस तरह से करते हुए ये छह पुंज हमने बढ़ाए। जो मैक्सिमम बढ़े ना छह पुंज, तो उतना ही किसी अन्य जीव ने एक बार उसके योग एक बार में छह द्रव्यों के बढ़ाया था। यानी योग थोड़ा ज्यादा था तो उसके इतने ही परमाणु उतने हो सकते हैं। इस प्रकार अयोगी गुणस्थान के अंतिम समय के द्रव्य के सर्वोत्कृष्ट होने तक असंख्यात बार वृद्धि करनी चाहिए। असंख्यात बार योग की वृद्धि और बिना योग की वृद्धि होते होते इतने इतने विकल्प, कितने कितने विकल्प होते ना, एक एक औदारिक बढ़ाओ, फिर एक एक उसका विशेषोपचय इतने इतने बढ़ाओ, इस तरह से। और ये सभी अयोगी के अंतिम समय में स्थित है, उसमें अंतिम विकल्प को बतलाते हैं। यानी अयोगी के ही अंतिम समय में मैक्सिमम वाला कौन सा योग के पन पहले ग्रहण किया हुआ है ना, अंतिम समय है, परंतु वहाँ जो परमाणु पड़े हैं वो वहाँ कहाँ ग्रहण है ना, वो कार्मान ग्रहण कर रहा है ना, तेजस ग्रहण कर रहा है ना, औदारिक ग्रहण कर रहा है, वो पहले जो ग्रहण करके जो खिपाते खिपाते आए उसकी बात थी, पर पूर्व अवस्था में उसने अधिक योग से बांधा हुआ लेना है। समझ में आती है बात, नहीं समझे क्या? नहीं समझे अरे उसके सत्ता में अधिक है, क्योंकि उसने वो कभी किसी जीव ने ज्यादा योग, क्योंकि हमारी क्षपित कर्मोशिक की कंडीशंस क्या है, मिनिमम योग हमेशा लिया। अब यहाँ ऐसा जीव लिया कि जिसने एकाध बार उसका एक बार के लिए योग ज्यादा हुआ था, वो योग मिनिमम बढ़ा, फिर योग में और वृद्धि हुई, योग में और वृद्धि हुई, ऐसा भी जीव ले सकते है ना। तो योगों के जितने वेरिएशंस है एक समय के लिए उतने भी ले सकते हैं वहां पर, क्योंकि उसकी सत्ता में पहले इतने परमाणु ज्यादा थे, तभी जाके उसको हम कहेंगे उसने उसके सत्ता में अधिक रहे हैं। देखो क्या कहता है, फिर पढ़ती हूँ मैं उसका पैराग्राफ। बोलो आप, बोलो बोलो। हाँ वही घोटाला। देखो औदारिक शरीर का जो ग्रहण है वो औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से हो रहा है। नाम कर्म वो वैकृत बांध रहा है, उसकी चर्चा मत करो अभी। औदारिक शरीर नाम कर्म अभी मनुष्य में आया है, देव से आया मान लेते हैं, या वो कहीं से भी लाओ उसको, तो उसके औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है, उसके कारण वो औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण कर रहा है। अभी वो ग्रहण करता है तो कितने परमाणु ग्रहण करता है, तो जैसा योग है समय प्रबद्ध, तो योग ज्यादा होगा तो ज्यादा ग्रहण करेगा कि नहीं, वही तो कह रहे। उसमें अपकर्षण उत्कर्षण के द्वारा जितनी वृद्धि हुई छह पुंजों में, उतनी उसने एक बार योग ज्यादा करने से ग्रहण की थी, तो वो सत्ता में पड़े थे तब जाके कम खिपे उसके। सबका होता है, औदारिक शरीर में भी परमाणुओं का होगा, है ना, तभी तो बातें होती है। सब में बताए ना, अपकर्षण उत्कर्षण तेजस औदारिक कारमान तीनों में होगा, शरीर के परमाणुओं में बात चल रही है। कारमान शरीर ने कर्मों का अपकर्षण उत्कर्षण, वैसे औदारिक शरीर का भी अपकर्षण उत्कर्षण होगा ना, होगा, अधिक परमाणु खिर जाएंगे। इस प्रकार अयोगी गुणस्थान के अंतिम समय के द्रव्य के सर्वोत्कृष्ट होने तक असंख्यात बार वृद्धि करनी चाहिए। उसमें अंतिम विकल्प को बतलाते, अभी अंतिम मैक्सिमम किसके हो सकते हैं उसकी बात है। अयोगी के अंतिम समय में मैक्सिमम परमाणु किसके पाए जाएंगे उसकी बात यहाँ बता रहे। कोई एक गुणित कर्मांशिक जीव, अभी कौन सा लिया, क्षपित में योग बढ़ाया, ये बढ़ाया वो बढ़ाया, ऐसे उल्टे क्रम से चले आओ, तो क्षपित गोलमान गुणित गोलमान अभी गुणित तक आके पहुंचे। तो कोई एक गुणित कर्मांशिक जीव, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बतानी है, सातवीं पृथ्वी में तेजस और कार्बन शरीर को उत्कृष्ट करके, क्योंकि उसमें जो गुणित कर्मांशिक के जो सारे कंडीशंस है वो अप्लाई होते हैं, पुनः मरकर दो तीन भौतिक तीर्यंचों में उत्पन्न होकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, पुनः गर्भ से लेकर अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष का होने के बाद संयोगी जिन होकर कुछ कम पूर्व कोटि काल तक संयम गुण श्रेणी निर्जरा करके अयोगी गुण स्थान के अंतिम समय में स्थित हुआ, उसके प्रत्येक शरीर की वर्गणा पूर्वोक्त प्रत्येक शरीर की वर्गणा के समान होती है। वो योग से जो बढ़ा था वगैरह वगैरह हो गया, असंख्यात बार वृद्धि करनी चाहिए वाली थी ना, वो योग के द्वारा वृद्धि असंख्यात बार करना चाहिए, उसके समान ये होती है। अब यहाँ पर वृद्धि नहीं है क्योंकि इसने सर्वोत्कृष्ट पने को प्राप्त कर लिया है। गुणित कर्मांशिक से आए पूर्वोक्त, कौन से जो जो क्षपित कर्मांशिक के तो योग के द्वारा असंख्यात बुद्धि की थी तब उसके समान। आप ही बोलो, उसका कारमान और तेजस ज्यादा होगा, औदारिक कितना होगा, नहीं समझे। योग की बात नहीं है, पूर्व कोटि की आयु है तो पूर्व कोटि के हर समय में औदारिक शरीर ग्रहण कर रहा है, केवल अयोगी में उसने नहीं ग्रहण किया, यानी करीबन पूर्व कोटि तक के औदारिक के परमाणु लेना ना हर समय के, उसको 8 साल में ही बनाएंगे तो औदारिक के 8 साल के परमाणु मिलेंगे उसको। एक कुपूर्व की आयु है और 8वें साल में उसको सहयोगी बनाए। ख्याल में आती है बात? औदारिक का मैक्सिमम लेना है यहाँ पर, इतने सारे समय प्रबद्ध है ना उसके पास। कर्मों में और तेजस में हम समझ सकते हैं कि वो ज्यादा वहां रहने चाहिए, परंतु वहां उसका भी यथायोग्य ग्रहण तो उसका भी है। तेजस कर्मान का भी समय प्रबद्ध तो उतना ही होगा, भले कौन से कर्म नहीं बन रहे उसकी बात छोड़ो, पर जो बन रहे हैं उसका तो समय प्रबद्ध है ना वहां पर। आपके जो प्रश्न है, संयम धारण किया और आठवें तो उसकी श्रेणी निर्जरा हुई, पर वो तो कर्मों में हुई, औदारिक शरीर में क्या हुआ? औदारिक शरीर और उसके पूरे विसरसोपचय कितने बढ़ेंगे उसमें? तो 8 साल में उसको अगर मोक्ष प्राप्त कराते तो ये सब इतना बड़ा पुंज नहीं होगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी उन्होंने जानकर ही बताई है ना, केवल तर्क से नहीं बताई है। वही मुझे विकल्प आया था, 8 वर्ष का हो क्यों बना नहीं लिया उन्होंने, पूर्व कोटि का क्यों लिया, क्योंकि औदारिक का परमाणु मैक्सिमम वो बना रहा है ना। इसलिए पूर्व कोटि को लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। 72 पेज पर, यानी इसने सर्वोत्कृष्ट प्राप्त किया था। अब नया पैराग्राफ। ये सारा ही कथन अभी तक का अयोगी के अंतिम समय में देखा। यानी प्रत्येक शरीर वर्गना के जघन्य से लेकर कितने परमाणु बढ़ने तक यहाँ सब विकल्प बताएं। हाँ, अब कहते अयोगी के द्विचरम समय का आश्रय करके कथन करते हैं, यानी उसके एक एक निशय का भी एक्स्ट्रा पड़ा है सत्ता में, उसमें भी इतने विकल्प उत्पन्न करा सकते हैं। यथा जिस गुणित कर्मांशिक जीव ने, अभी तो हमें आप इसके आगे गुणित ही लेना है, क्योंकि हमको एक एक परमाणु, क्योंकि हमें जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के बढ़ते हुए परमाणुओं की बात बतानी है, तो पहले अंतिम समय में इतने बढ़ाए, गुणित कर्मों को सर्वोत्कृष्ट किया, अब गुणित कर्मांशों को ही द्विचरम लेना है। उसका एक निश्चय एक्स्ट्रा था वहां, उसके बढ़ाए, यहाँ अलग जीव लिया जिसके पहले से द्विचरम समय में इतने परमाणु थे। तो जिस गुणित कर्मांशिक जीव ने सातवीं पृथ्वी में तेजस शरीर और कार्मन शरीर की वर्गणा को उत्कृष्ट किया है, और जो द्विचरम गुणश्रेणी द्रव्य से तथा कार्मन तेजस और औदारिक शरीर की द्विचरम गोपुच्छा से न्यून उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा को करके अयोगी के द्विचरम में स्थित है। क्या कहा? पहले तो अंतिम समय में स्थित था, अभी द्विचरम वाला है, उसके अंतिम समय की वर्गणा के साथ द्विचरम समय की वर्गणा समान होती है। पहला ऐसा जीव लिया था गुणित कर्मांशी का आकर अंतिम समय में उत्कृष्ट हुआ था, अब ऐसा अन्य जीव लिया कि वो द्विचरम समय में वो एक परमाणु वाला अधिक है उसके समान है, फिर भी उसके समान है, उसने अंतिम समय में जितना किया था ये जीव द्विचरम समय में उतना ही है। यानी अंतिम समय में उसको बढ़ाते बढ़ाते वो एक पूरा निशेक एक्स्ट्रा है तीनों का, इतना लिया था, अब ये इसको वही वैसे ही उतनी ही परमाणु की बात द्विचरम में किसी अन्य जीव के होगी जो गुणित से आया हुआ। पुनः अयोगी के अंतिम समय की वर्गणा को छोड़कर अयोगी के द्विचरम समय की क्षपक प्रत्येक शरीर वर्गणा अपने उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा के प्रमाण को प्राप्त होने तक पूर्वोक्त विधि से बढ़ानी चाहिए। यानी वो द्विचरम समय में एक एक परमाणु बढ़ाते, जैसे हमने पहले बढ़ाए थे औदारिक के विश्लेषोपचय, फिर औदारिक का एक शरीर का परमाणु, ऐसे पूरी सेम विधि, फिर वो योगों को भी बढ़ाते हुए फिर वही बतानी है। इस प्रकार त्रिचरम चतुश्चरम आदि समयों में औदारिक तेजस और कार्मन शरीर तथा उनके पृथक पृथक विश्लेषोपचय परमाणु बढ़ाकर उतारते हुए उतारते हैं ना, एक एक समय पीछे जा रहे हम। सहयोगी गुणस्थान के प्रथम समय तक ले जाना चाहिए। अब इससे पीछे उतार कर ले जाना संभव नहीं है, क्योंकि वो तो देखो प्रत्येक शरीर कब बना, तो तेरहवें गुणस्थान के पहले समय में, तो इसके पीछे नहीं जाना संभव, क्योंकि क्षीण कषाय के अंतिम समय में बादर निगोद वर्गना उपलब्ध होती है। वो अंतिम समय में जो बच्चे हुए हो सारे उसी समय चले जाते हैं, है ना। इसलिए सातवीं पृथ्वी के अंतिम समयवर्ती नारकी के द्रव्य का आश्रय करके वृद्धि का कथन करता है। पहले अयोगी के सभी असंख्यात समयों में उल्टा बढ़ाते हुए ले गए, अब नारकी भी प्रत्येक शरीर वाला है, अब उसके अंतिम समय में वहां घटित करेंगे। अब गुणित कर्मांशिक विधि से आकर सातवीं पृथ्वी में अंतिम समय में विद्यमान नारकी के तेजस शरीर और कार्मन शरीर के चार पुंजों की अपेक्षा, ये चार पुंजों ने वो शरीर और उनके विश्रसोपचय, प्रथम समयवर्ती सहयोगी जिनके तेजस शरीर और कार्मन शरीर के चार पुंज विशेष हीन होते हैं, प्रथम समयवर्ती सहयोगी जिनके औदारिक शरीर परमाणु पुद्गल पुंज से अंतिम समय में वैक्रियक परमाणु पुद्गल पुंज असंख्यात गुणा होता है, प्रथम समयवर्ती सहयोगी जिनके औदारिक शरीर परमाणु पुद्गल पुंज से नारकी के अंतिम समय में वैक्रियक परमाणु पुद्गल पुंज असंख्यात गुणा होता है, गुणकार क्या है, तो गुण जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग गुणकार है। क्योंकि देखो वैक्रिक शरीर के ऐसे भी परमाणु ज्यादा होते हैं, नीचे का फिर पढ़ो। हाँ देखो फिर से अभी, अच्छा आपका क्या था प्रश्न? हाँ सातवें नारका नारकी वो गुणित कर्मांशिक वाला। हाँ अभी देखो यहाँ पेज नंबर 72 नीचे से पांचवी लाइन, इसलिए सातवीं पृथ्वी के अंतिम समयवर्ती नारकी के द्रव्य का आश्रय करके वृद्धि का कथन करते हैं। अब यहाँ से उल्टे जाएंगे, अब ये फिर पढ़ना है 72 पेज का नीचे से तीसरी लाइन। हम पहले अयोगी में सारे उल्टे क्रम से आते हैं, फिर सहयोगी के पहले समय तक आए थे, अब उसकी कंपैरिजन नारकी के साथ करनी है, क्योंकि हमको तो परमाणु बढ़ाने हैं। वहां औदारिक शरीर था, अब नारकी का वैक्रिक लेना है। तो वहां तेजस कार्मण को जो लिया था वो तो परमाणु पुंज भले समान हो, पर औदारिक का जो पुंज था उससे वैक्रिक का पुंज ज्यादा होता है। बारहवें में नहीं लाई जा, तो बादर निगोद वर्गना हो जाती है। यहाँ प्रत्येक शरीर यहाँ तक ही है, अभी प्रत्येक शरीर में और बढ़ाना है, तो नारकी भी प्रत्येक शरीर वाला है, वहां कहाँ निगोद है, तो उसको लेना है। अभी हमें एक एक परमाणु को बढ़ाते हुए बताना है प्रत्येक शरीर की वर्गना मैक्सिमम कहाँ जाए जाकर। नहीं नहीं देवों में नहीं होगे, ये नारकी में होगे, गुणित कर्मांशिक नारकी में होते हैं। होगा उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना कहाँ होती मालूम है? अग्निकायिक वाला दावानल वाला लेंगे। हाँ अभी अभी इसको पढ़ेंगे ना पहले। यहाँ तो एक जीव के कर्म लिए, वहां तो कितने जीवों के कर्म लेने पड़ेंगे। शरीर की अवगाहना से मत जाना है, ख्याल में आती बात। अभी तो एक लिया है, परंतु उसकी प्रत्येक शरीरों की वो मरगणा कहने से पूरा मिलकर एक स्कंद हो गया ना सबका मिलकर। हमको वर्गणा कहने से उसका स्कंद बना है, एक एक जीव को भी हम कहेंगे वो प्रत्येक शरीर वर्गणा, और अनेक जीवों के मिलकर भी प्रत्येक शरीर वर्गणा कह सकते हैं उसको। हाँ सब मिलकर एक स्कंद हुआ, हाँ वो कितना होता है वहां तक अभी बढ़ा रहे, हमने मिनिमम से शुरू किया है, अभी तो एक एक ही जीव के ले रहे। हाँ हाँ उप एक इंद्रियों में जो हो गए स्कंद हो गए वो अनेक जीवों की अपेक्षा वो पूरी वर्गणा हो जाएगी। देखो 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 अभी फिर पढ़ते मैं 72 पेज फिर से पढ़ती हूँ नीचे से तीसरी लाइन। गुणित कर्मांशिक विधि से आकर सातवीं पृथ्वी में अंतिम समय में विद्यमान नारकी के तेजस और कारमान शरीर के चार पुंजों की अपेक्षा, ये चार की कंपैरिजन कर रहे, प्रथम समयवर्ती सहयोगी जिन के तेजस शरीर और कारमान शरीर के चार पुंज विशेष हीन होते हैं। हीन होते हैं, क्यों हीन होते हैं? क्योंकि उसने 2-3 बहुत इंद्रियां किए, फिर वो आया है 8वें साल में उसने संयम धारण किया है, और जब वो तो नहीं नहीं वो संयम धारण किया है तो फिर वो सहयोगी जल्दी हो गया है, फिर भी कुछ तो उसने वहां कुछ तो गया ना उसका, तो विशेषहीन हो गया। यानी चार पुंजों की अपेक्षा विशेषहीन है कौन से सहयोगी के, उन प्रथम समयवर्ती सहयोगी जिनके औदारिक शरीर परमाणु पुद्गल पुंज से नारकी के अंतिम समय में वैक्रियक परमाणु पुंज असंख्यात गुणा होता है, वो चार पुंज विशेषहीन है तो ये असंख्यात गुणा हो जाएगा। गुणकार क्या है? जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग गुणकार है, असंख्यात गुणा है, विशेषहीन है। किसका? सहयोगी केवल का विशेषहीन है। अभी हमको एक ही पुद्गल परमाणु बढ़ाकर बताना है उनको। देखो शंकाकार पूछता है यह किस प्रमाण से जाना जाता है, वो पढ़ा ना, जगत श्रेणी का असंख्यात भाग है। अब प्रमाण बता रहे समाधान, बाह्य वर्गणा अनुयोग द्वार में 5 शरीरों के कहे गए प्रदेश अल्प भूतव सूत्र से जाना जाता है, यानी कौन से शरीर में कितने प्रदेश यानी परमाणु होते उसकी बात है। यथा औदारिक नहीं नहीं अभी आएगी बात, वही तो सब जगह है, जीवकांड में भी है, तत्वार सूत्र में भी है। औदारिक शरीर के प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है, वो स्थूल है परंतु उसमें नंबर ऑफ परमाणु कम है, इनसे वैकिरिक शरीर के प्रदेशाग्र असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग गुणकार है, इनसे आहारक शरीर के प्रदेशाग्र असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग गुणकार है, इनसे तेजस शरीर के प्रदेशाग्र अनंत गुणे हैं। गुणकार क्या है? अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों का अनंतवा भाग गुणकार है। ये टोटल परमाणु की बात है, देखो एक एक वर्गणा की बात नहीं है, पूरे शरीर के परमाणुओं की बात है। वर्गणाओं में हमने अनंत गुणा की, एक एक वर्गणा में अनंत गुणा होते हैं, पर पूरे शरीर के परमाणुओं की बात है, पूरा शरीर स्कंद की बात है। इनसे कारमान शरीर के प्रदेशाग्र अनंत गुणे हैं, तत्वार सूत्र में आता है ना, आहारक तक असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा, उसके दो आगे जो है अनंत गुणा अनंत गुणा। हाँ अभी यही तो है, ये तो हाँ हाँ बस बस इतने असंख्यात गुणा होता है शरीर के परमाणु। देख अभी इतना हिसाब लगा के बता रहे, क्योंकि देख वो तो सूक्ष्म है ना, हमको वो हमारे नेमा काका हमको उदाहरण देते थे, गेहूं है वो, फिर वो क्या होता है उसकी थुली फाड़ा गेहूं हाँ, और फिर उसका रवा है, और फिर आटा है, मैदा है, आगे आगे की सूक्ष्म है, परंतु उन्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पीसेस कितने ज्यादा है, ये तो बहुत स्थूल उदाहरण देते थे हमको वो वर्गणाओं के लिए। वैसे आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म है, उसमें नंबर ऑफ परमाणु अधिक अधिक है, औदारिक से वैकरिक में असंख्यात गुणे, उससे असंख्यात गुणे आहारक में, और तेजस में और कारमाण में अनंत गुणे अनंत गुणे। और उसका गुणकार कितना है, तो अभव्यों से अनंत गुणा, और सिद्धों का अनंत भाग गुणकार है। फिर शंका, ये गुणकार किस प्रमाण से सिद्ध है? समाधान, अविरुद्ध आचार्यों के वचन से सिद्ध है। यानी उस जमाने में आचार्य स्वयं ही प्रश्न उठा रहे हैं, परंतु तो व्हाट इज द प्रूफ, तभी भी पूछने वाले थे ना उनके सामने। आजकल भी पूछ देना, कहाँ लिखा है, कहाँ आगम, क्या आगम का आधार है, वैसे वो भी पूछ रहे क्या आधार है। हाँ, आपका प्रश्न है, वर्गणाओं में जो गुणकार बताया था वो वर्गणा की बात है, और एक एक शरीर में एक समय में ऐसी अनंत वर्गणाएं ग्रहण होती है, तो अनंत वर्गणाओं का मिलकर संचय जो है डेढ़ गुणा गुणानिगुणा समय प्रबद्ध, वो पूरे शरीर का होगा कि नहीं होगा? शरीर का, पूरे शरीर का होगा ना वो। और ऐसे भी देखो, इनकी इतनी सातवीं पृथ्वी में कितना आयु है अभी, तो 33 सागर तक हर समय में उसने औदार्य वैकरिक का समय प्रबद्ध ग्रहण किया कि नहीं किया? तो उसको गुणित में लिया ही हमने, गुणित को तो इंक्लूड कर ही दिया था, और वही जीव जाके सहयोगी बना है, वही जीव लिया है गुणित कर्मौशिक वाला, उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ख्याल में आई ना बात? और वहां जो है पूर्व कोटि के परमाणु औदारिक को पुंज को ग्रहण करेगा, और ये 33 सागर में उसने इतने समय प्रबद्ध ग्रहण किए हुए, इसलिए तेजस कारमाण में थोड़ा कम हुआ है, परंतु इसमें असंख्यात गुना ज्यादा हुआ है। ऐसे भी एक से दूसरे शरीर में ज्यादा होते ही होते हैं, और ये भी उसके तो काल की अपेक्षा भी घटित होता है। ऐसे काल को नहीं भी लो आप, क्योंकि आहारक शरीर तो एक अंदर मुहूर्त में बना है, फिर भी उसके परमाणु असंख्यात गुणे हैं, ये तो नक्की हुआ ना। केवल काल की अपेक्षा नहीं लेनी है, ये अविरुद्ध आचार्यों के वचन से। अभी यहीं रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकन सदा देत हो। मैं